महाराष्ट्र, नागपुर। नागपुर का आउटर एरिया, दोनों तरफ घनी जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़। शाम का वक्त था, आकाश में बादल घिराए थे, बिजली कड़क रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे वहां लगे पेड़ खुशी से झूम रहे थे। अजीब सी शांति थी वहां। तभी एक कार तेज रफ्तार में वहां आई और अचानक ही झटके से रुक गई। अंदर एक लड़का और एक लड़की बैठी थी। लड़के का चेहरा गुस्से से दमदमाया हुआ था और आंखें एकदम लाल थीं। वहीं लड़की चुप सी बाहर देख रही थी। अचानक झटके से कार के रुकने से लड़की का सर शीशे से टकरा गया और माथे पर चोट लग गई और थोड़ा थोड़ा खून आ गया। लड़की ने दर्द से अपने पतले पतले लबों को आपस में भींच लिया और माथे पर हाथ रखकर दूसरी तरफ देखा, जहां वो सूट बूट पहना लड़का बैठा था। पर अब वहां किसी को ना देखकर लड़की डर गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी तरफ का दरवाज़ा खुला और किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको कार से बाहर खींच लिया। लड़की एकदम से घबरा गई, पर उसने सामने देखा तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसके साथ वो थी। लड़की ने उसे गुस्से में देखा तो हिम्मत करते हुए बोली, सॉरी निहाल, मुझे नहीं पता कि क्यों तुम मुझ पर तब से इतना गुस्सा कर रहे हो, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ी? माई फुट, तुमने आज जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। क्या सोच रहे होंगे वो सब कि मेरी मंगेतर कैसी है, कैसी लड़की को मैंने खुद के लिए पसंद किया है। कहाँ मैं, मुझे देखकर अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी मुझ पर फिदा हो जाती हैं। एक से एक लड़की मेरे आगे पीछे घूमती है, पर मैं ही किसी को भाव नहीं देता। और कहाँ मेरी मंगेतर जो इतनी डाउन मार्केट है कि कोई लड़का उसे देखना भी पसंद ना करे। तुम्हारा और मेरा कोई मेल ही नहीं है, ये बात आज मुझे समझ आई है। कहाँ मैं, कॉलेज का सबसे फेमस लड़का, और कहाँ तुम, एकदम बहन जी टाइप लड़की जिसे ना कपड़े पहनने का ढंग है ना ही बात करने का सलीका आता है। यहाँ तक कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि किसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, लोगों के बीच कैसे उठते बैठते हैं, कैसे खाते हैं। तुम बिल्कुल गांव की गवार जैसी हो। मुझे अब खुद पर हैरानी हो रही है कि मैंने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया। उसकी बातें सुनकर लड़की की गहरी भूरी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी हथेली से उसे साफ करते हुए कहा, मैंने किया क्या है, क्या गलत है इन कपड़ों में। लड़की ने अपने कपड़ों को देखते हुए कहा। उसने व्हाइट कलर का सुंदर सा सूट पहना हुआ था, गले में दुपट्टा लटक रहा था। मासूम सा छोटा सा भरा भरा चेहरा, प्यारी प्यारी सागर सी गहरी भूरी भूरी आंखें, छोटी सी नाक और मध्यम आकार के करीने से तराशे गए गुलाबी गुलाबी लब, कंधों से नीचे और कमर से ऊपर तक लहराते खुले करली सुनहरे बाल जिनकी कुछ लटे उसके गालों पर झूल रही थी। काजल से सजी आंखें बेहद आकर्षक लग रही थी। सामान्य कदकाठी थी, ना ज्यादा पतली थी ना ही मोटी। गोल गोल चबी चबी गाल जो उसको और भी क्यूट बना रहे थे। उसका रंग ना गोरा ना काला, साफ रंग था, देखने में कमाल लग रही थी। अजब खूबसूरती थी, चेहरे पर अलग ही कशिश और बिल्कुल करीने से तराशा गया बदन, किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी वो। उसके आंसू देखकर लड़के को और भी चिढ़ होने लगी। उसने खींचते हुए कहा, अब रोने मत लगना। मैं नहीं रो रही, पर तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, लड़की ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। उसकी बात सुनकर निहाल ने उसको ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। गुस्सा ना करूं तो और क्या, प्यार करूं तुम्हें। कपड़े देखे हैं आपने, क्या दिया था मैंने तुम्हें, और तुम क्या पहन कर आई हो, बहन जी जैसे सूट और ये दुपट्टा डालकर पहुंच गई मेरी पार्टी में। देखा था ना वहां सबने कैसे कपड़े पहने थे और तुम्हें इन कपड़ों में देखकर कैसे रिएक्ट कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो, जब मैंने तुम्हें खास वो ड्रेस दी थी और कहा था कि आज की पार्टी में मैं तुम्हें सबसे मिलवाने वाला हूँ तो वही पहन कर आना, अच्छे से रेडी होकर आना ताकि मेरे साथ खड़े होने लायक लग सको, तो तुम ये कपड़े पहनकर आई ही क्यों। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो ड्रेस बहुत छोटी है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मुझे उनमें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए, लड़की ने फिर से सफाई दी। पर उसकी बात सुनकर निहाल ने गुस्से में उसकी बाँह पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इसी बेवकूफियाना जिद की वजह से आज मुझे अपने दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ कह सके, पर आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे उनके सामने इतना एम्बैरेस्ड होना पड़ा। वो मुझे ताने मार रहे थे कि ऐसे तो बहुत चौड़े में रहता है, इतना एटीट्यूड दिखाता है, टशन में घूमता है, और गर्लफ्रेंड कैसी पसंद की है, मैं किसी को जवाब भी नहीं दे सका। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी सबके सामने इतनी इंसल्ट हुई है जितनी आज तक कभी नहीं हुई थी। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम ही इंपॉर्टेंस रखती हो, मेरी इच्छा मेरी इज्जत की तुम्हारे नज़रों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरा स्टेटस अलग है, अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम खुद को कभी बदलोगी। तो ठीक है, मैं भी तुम जैसी बेवकूफ और डाउन मार्केट लड़की को जिंदगी भर के लिए अपने सर पर नहीं बिठा सकता और इंसल्ट नहीं करवा सकता तुम्हारी वजह से अपनी, इसलिए अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मैं अभी इसी वक्त इस सगाई को तोड़ता हूँ। निहाल ने गुस्से में उसके हाथ को झटक दिया तो लड़की के कदम लड़खड़ा गए। वो डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी, जबकि लड़का वापस दूसरी तरफ जाकर कार के अंदर बैठ गया और गुस्से में उसने कार स्टार्ट भी कर दी। लड़की बुत बनी खड़ी ही रह गई। जब कार उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो जाओ मुझे छोड़कर, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी के लिए कभी खुद को नहीं बदलूंगी। जाते हो तो जाओ जहन्नम में, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम जैसे खुदगर्ज लड़के का कभी चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी तो मैं रोऊंगी तुम्हारे लिए? अरे रोए मेरे दुश्मन, मैं नहीं रोने वाली किसी के लिए। मैं खुद से घर चली जाऊंगी, और अब तुम नाक रगड़ते हुए भी मेरे पास आओगे ना, तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। लड़की ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, फिर सड़क पर जाने के बजाय गुस्से में जंगल की तरफ चल दी। वो बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी बिना ये देखे कि कहाँ जा रही है। अचानक ही उसको अपने पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी तो वो एकदम से चौंक गई। उसने घबराकर आसपास देखा तो खुद को जंगल में देखकर डर से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी उसको किसी के अपने तरफ आने की आहट सुनाई दी तो उसने हाफ देखा ना ताव और सीधे दौड़ पड़ी। जहां मर्जी मुड़ जाती पर उसके पीछे पीछे वो साया भी जा रहा था। भागते भागते लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, जिस वजह से सामने से उसका ध्यान हट गया और वो दलदल में जा गिरी। इसके साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। डर के मारे वो अपने हाथ पैर चलाने लगी। अचानक ही किसी ने उसके मुंह को अपनी हथेली से दबा दिया और पलक झपकते ही उसे लेकर हवा में उड़ा गया। उनके वहां से जाते ही वो साया सामने आ गया। खूनी लाल आंखें, काले कपड़े और दोनों तरफ से मुंह से बाहर आते दांत जिनमें खून लगा हुआ था। वो अदृश्य साया लड़की को अपने साथ उड़ाते हुए वहां से दूसरे तरफ वाले जंगल में आ गया। लड़की छटपटा रही थी और हैरानी और डर से उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। डर से गला सूख गया था। कुछ दूरी पर आकर उस साये ने उसको जमीन पर उतार दिया। लड़की के सफेद कपड़े एकदम गंदे हो गए थे। छूटते ही लड़की ने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। तभी उसके कानों में पानी के बहने की आवाज पड़ी तो वो बाकी सब भूलकर आवाज की दिशा में चल पड़ी। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक सुंदर सा झरना था। लड़की पानी देखकर खुशी से उछल पड़ी और झट से झरने के नीचे जाकर पानी को हाथ में लेकर उसे खुद पर डालने लगी।
वो पानी देखकर एकदम बच्ची बन गई थी और मस्ती करते हुए नहा रही थी। वहीं एक विशाल पेड़ के पीछे वो साया अब भी मौजूद था और उसकी निगाहें उस लड़की की निश्चल मुस्कान पर ठहरी हुई थीं। अभी कुछ ही देर हुई थी कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। अब तो लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं उसको देखकर उस साये के लब भी हल्के से खिंच गए और नज़रें जैसे लड़की के चेहरे पर जा ठहरी थीं। कुछ देर बाद लड़की को लगा जैसे किसी की नज़रें उसे ही देख रही हैं, तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। वो उसी दिशा में बढ़ गई जहां पेड़ के पीछे वो साया खड़ा था। लड़की को अपनी तरफ आता देख वो साया भी कुछ विचलित हो गया। अगले ही पल उसकी आंखें एकदम नीली हो गईं और मुंह के साइड से दो दांत बाहर आ गए। वो एकदम से लड़की के सामने आ गया। अंधेरे में और बारिश की वजह से लड़की उस साये को ठीक से देख नहीं पाई, पर उसकी नीली डरावनी आंखें और बाहर आए दांत देखकर वो समझ गई कि सामने वैम्पायर खड़ा है, और अगले ही पल वो निठाल होकर जमीन पर जा गिरी। इसके साथ ही वो साया गायब हो गया। टू बी कंटिन्यूड।